से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
भाई जी का परिचय देने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आज आपका स्वमान है, हर परिस्थिति में अचल अडोल आत्मा हो, तो सारा दिन इसका अभ्यास करेंगे और इसी विषय पर, अचल अडोल स्थिति पर प्रकाश डालने आज हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी छोटेलाल भाई जी। एक हाथ फैलाकर भाई जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आपका लौकिक जन्म राजस्थान की धरनी में हुआ है, लेकिन आप यह ईश्वरीय ज्ञान हरियाणा फरीदाबाद की धरनी से मिला। आपको ज्ञान लिए पूरे 45 वर्ष हो चुके हैं और 40 वर्षों से आप मधुबन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में जो आपकी सेवा है वो है आंगन की सिक्योरिटी करना और रात्रि क्लास के लिए स्पीकर फिक्स करना। इसके अलावा बाबा ने आपके अंदर बहुत अच्छी खूबियां भरी है ज्ञान और योग की, जिसके बल पर आप पूरे भारतवर्ष से निमंत्रण मिलते रहते हैं भट्टिया कराने। इतना ही नहीं, लेकिन आप विदेश भी सेवा अर्थ भ्रमण करके आए हैं। आपके लौकिक घर में गीता पाठशाला चलती है। आपके तीनों लौकिक बहनें ज्ञान में चलते हैं और उनकी 6 बेटियां समर्पित रूप से सेंटरों पर सेवाएं दे रहे हैं। तो आज भाई जी हमको अचल अडोल स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। सुनते हैं भ्राता जी से।
ओम शांति। आज हम सभी दादी जी का दिन मना रहे हैं। दादी जी में हम सभी ने देखा, और खास हमारा बहुत ही दादी जी के निकट रहने का भाग्य मिला। आंगन में होते थे, सिक्योरिटी की सेवा होती थी, दादी अनेक ऑफिस के काम से बुलाती थी। कई बार जब दादी फ्री हो जाती थी तो आंगन में आकर बैठती थी और हम पूछते थे, या कई बार मधुबन वालों की क्लास में भी दादी से पूछते थे, दादी जी आपका पुरुषार्थ क्या चलता है, क्या पुरुषार्थ करते हैं? हमने तो कभी देखा नहीं दादी को कुछ विशेष एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करते। तो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं महानताएं दादी जी के अंदर हमने देखी। तो दादी जी ने कहा, मैं कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करती हूं, मैं सदैव सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, वो करा रहा है, वो चला रहा है, मैं निमित्त बन के पाठ बजा रही हूं। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और हमने देखा कि कहीं भी कोई समस्या बात आती थी, बाबा बैठा है, सब ठीक कर देगा। और सचमुच बाबा ठीक कर देता था। आज जैसा कि मॉर्निंग क्लास में भी आप लोगों ने सुना होगा, दादी जी की स्टैंप रिलीज होनी है। ऐसे ही जब ब्रह्मा बाबा की स्टैंप रिलीज होनी थी, उस समय कई सारे लोगों की तरफ से कुछ विरोधाभास का वाइब्रेशन आए सुनने को मिला यहां वालों के। दादी जी ने कहा, नहीं, सब योग बट्टी करो, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबको एक दिन की पूरी तपस्या में बिठा दिया दादी ने, यही मेडिटेशन हॉल में। किसी ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ ठीक हो गया। तो ऐसे कहीं भी कोई बात, समस्या आए, परिस्थिति आए, बस बाबा को अर्पित कर दो, बाबा ये बात ऐसे ऐसे आप देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। अभी का ही देखो अनुभव बताऊं, मेरे को परसों से वो बहन जी बोल रही थी, इंदिरा बहन जी यहां नहीं है, नीचे गई है, जो प्रोग्राम बनाती है बैठी का सुनाती है। तो पहले उन्होंने बोला आपको क्लास कराना है, पहले बोला था 10:30 से, कुछ और टाइम दिया था, फिर कल बोला कि नहीं आपका क्लास नहीं होगा और दूसरा प्रोग्राम रहेगा, रामनाथ भाई कराएंगे इस समय। मैंने कहा ठीक है। फिर कल रात को मेरे को फोन कर बता दिया कि नहीं, रामनाथ भाई का कैंसिल हुआ है, आपको ही कराना है। तो कोई कार्य के लिए आपको पहले कहे करना है, फिर कहे नहीं करना है, फिर करना है, तो कैसी स्थिति होगी? थोड़ा हलचली वाली बात होती है ना। लेकिन इनका बाबा सेवा तो आपने करानी है, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, जिसमें कल्याण हो, जिसमें सेवा हो, आप देख लेना बस। हम बिल्कुल हल्के रहे, तो जहां हल्के हैं तो वहां सब कुछ सहज और सरल हो जाता है। कोई कार्य आपको करना आता हो या नहीं आता हो, लेकिन आपने बाबा की सेवा समझकर हां कर लिया, तो बाबा आपसे वो कार्य करवा लेगा। क्यों? कराने वाला तो बाबा है, आप हमको तो सिर्फ निमित्त बनना है। इसलिए बाबा की सेवाओं में कभी भी ना नहीं करना है, सदा हां जी का पाठ पक्का करके चलना है, तो कदम कदम पर उसकी मदद आपको मिलती रहेगी और वहां बड़ी से बड़ी सेवा भी सहज और सरल हो जाएगी, असंभव भी संभव हो जाएगा। एक अनुभव हम नए नए मधुबन निवासी बने थे। मुझे मधुबन में रहते जैसा कि बताया बहन जी ने अभी 40 साल हो गए। तो उस समय हमारे को कुछ क्लास कराने का भाषण करने का जरा भी अभ्यास नहीं था। तो उस समय तो ज्ञान सरोवर शांतिवन कुछ नहीं बना था, जो था मधुबन ही था। कभी दादियां यहां रहती थी, बाबा भी यहीं आते थे ओम शांतिवन में। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया कि जिन भाई बहनों पर क्लास कराना भाषण करना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए। तो मेरे को भी कहा दादी ने आपको भाषण करना है, मनोहर दादी ने। हमने चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना किया। और मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा, बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं, मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। बस ये पॉइंट स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। और बाबा को याद कर ये भी कहा कि बाबा यदि कुछ नहीं आए तो आप ही आना, आप ही भाषण कराना। तैयार हो गए। प्रोग्राम ऐसा था, टॉपिक किसी को बताए नहीं गए थे। कहा ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ, चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो। ऐसा वो प्रोग्राम था। अभी तैयारी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। तो और एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति वन का हाल फुल भर गया है। सब दादे दादियां आगे बैठे हैं, जिनको कुछ बोलना नहीं आता हो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहने 7 भाई सब नए नए, उनमें से एक हम भी थे। तो आप सोच सकते हैं कैसा वो सीन होगा है। प्रोग्राम शुरू हुआ, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, 4th नंबर हमारा आया, हम भी गए। उस प्रोग्राम का नाम रखा गया था काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो है वो नहीं कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। तो 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, 4th नंबर हमारा आया, हम भी गए। चिट्ठी उठाई और खोल के देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आई, दूसरी तरफ विचार चले कि भाई इस पर हम क्या बोले दे, तो बिल्कुल ही अपने से अलग टॉपिक है। अच्छा सोचने का भी टाइम नहीं, माइक के आगे खड़े हैं, बोलना ही अपने को है। अच्छा मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया, मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ। और ऐसा नहीं हो लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाए भाषण अच्छा होना चाहिए, ये भी बाबा को याद करके बोल दिया। और जैसे ही ओम शांति कहकर बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट स्मृति में आती गई, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें 1st नंबर आया। तो आप समझ सकते हैं किसको 2 शब्द बोलना नहीं आता और इतना अच्छा भाषण कर जाए, 1st नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला। तो इसलिए ज्ञान तो आप सब लोगों को है, लेकिन मैं ज्ञान के पॉइंट के साथ साथ वैसा ही अनुभव सुना रहा हूं ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। और दादी जी के अंदर हमने देखा इतनी ऊंची श्रेष्ठ पावरफुल महान आत्मा थी दादी कि कोई भी बात उनके मन में नहीं रहती थी, जरा भी चेहरे से भी नजर नहीं आती थी। हम आंगन में होते थे, कई भाई बहने दादी से मिलने आते थे। एक टीचर बहन आई तो मुन्नी बहन ने मना कर दिया कि नहीं दादी अभी बिजी, अभी नहीं मिलेगी। उसका चेहरा उतर गया, बड़ी निराश उदास हो गई। बाहर आई तो हमने देखा, मेरे को पूछने लगी भाई जी हमको दादी से मिलना था, मुन्नी बहन ने मना कर दिया, मैं क्या करूं, मुझे जरूरी काम है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है आप बैठिए यहीं, दादी कभी कमरे में आती जाती होगी तो हम बता देंगे फिर जैसे आगे दादी ठीक समझे। थोड़े समय के बाद दादी बाहर हुई आई, मैंने कहा दादी आपसे बहन जी के मिलने के लिए बैठी हुई है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, भेजो भेजो। तुरंत दादी अंदर गई, मिली और इतना खुश हो के वो निकली बहन जी, तो बस दिल खुश हो गया उसका। ऐसे ही बड़ों को बड़े जैसा और बच्चों को बच्चा जैसा प्यार करती थी दादी। बच्चे आते थे बच्चों के प्रोग्राम, दादी पूछती अच्छा क्या खाएंगे बच्चों आप, गुलाब जामुन समोसा पकौड़े आइसक्रीम ये खाएंगे दादी, हाथ उठाते थे और वही दादी बनवाती थी, बच्चे खुश। इसलिए सभी दादी को क्या कहते थे, मेरी दादी है। जैसे बाबा को कहते हैं ना सभी मेरा बाबा है, तो ऐसे मेरी दादी है, हमारी दादी है। क्यों? क्योंकि दादी के मन में सभी के लिए अटूट प्यार था, उमंग उत्साह था, सब आगे बढ़े हैं, सब सुखी रहे, सब खुश रहे। तो ऐसे हमारे मन में भी हर एक आत्मा के प्रति निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना बनी रहनी चाहिए। सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, बाप समान बने, सहज निरंतर योगी बन जाए, सबके जीवन से विघ्न और दुख की घटनाएं खत्म हो जाए, ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना निरंतर हमारे मन में हर आत्मा के प्रति रहनी चाहिए। अगर जरा भी किसी के प्रति हमारे मन में नेगेटिव भावना है तो वो आपकी पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनेंगे, वो हलचल का कारण बनेंगे। आपके सामने अनेक विघ्न समस्याएं आती रहेंगी। तो यदि अचल अडोल स्थिति बनानी है तो एक तो जो बताया भगवान को सदैव साथ में रखो, दूसरा अपने मन की भावनाओं को सुश्रेष्ठ कल्याणकारी बनाओ। अगर भावनाएं सुश्रेष्ठ कल्याणकारी हैं तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है, वो कैसी भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता है वो शुभ भावना, शुभ कामनाओं के पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। आप में से कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते और विरोध करते होंगे, कई ऐसे भाई हो सकते हैं जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती और रुकावट डालती है। तो ऐसी या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है, तो ऐसी आत्मा की मनोवृत्तियों को आप कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, सुनिए ये अनुभव। लेकिन अनुभव सुनाने से पहले, एक व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, विघ्न डालता है, क्या ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है या बदल जाती है? रहती है शुभ भावना या बदल जाती है? ज्यादातर लोगों से यही सुनने को मिलता है कि बदल जाती है। तो देखो, हिसाब किताब चुक तो होने के लिए तो आएगा, आत्माएं विरोध करेंगी, लेकिन हमारे मन में जरा भी किसी के प्रति नेगेटिव भावना नहीं हो। अगर शुभ भावना है निरंतर आपके मन में सबके प्रति, तो उसकी कैसी भी नेगेटिव वाली मनोवृत्ति वाली आत्मा को आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव विचारों वाली आत्मा के प्रति भी शुभ भावना रहे, उसके लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है, ज्ञान और योग का बल निरंतर इमर्ज रूप में रहना चाहिए, तभी भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी रहेंगी, अन्यथा बदल जाती है। तो जहां निरंतर हमारे मन में शुभ भावना है, तो कैसे उसके द्वारा आप एक नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को परिवर्तन कर सकते हैं, एक अनुभव। एक भाई थे, बाबा के ज्ञान में चलते थे, उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी और बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना, इतना विरोध करती। तो वो भाई मधुवन आए बाबा से मिलने के, एक रात ऊपर भी पांडव वन में रुके, क्लास के बाद हमारे से मिले और यही प्रश्न किया कि भाई जी मेरी युगल बहुत विघ्न डालती है, मेरे को ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं? तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करिए, अगर आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो, सहयोगी बनाना चाहते हो, तो आज से ही दो बातों का पालन करके चलना बहुत जरूरी है। पहली बात, एक चाहे आपका वो कितना भी विरोध करे, लेकिन आपने अपने मन में कंप्लीट उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रख के चलनी है। दूसरा, ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्या करना है, क्यों करना है, वो मैं बतला रहा हूं कि अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है, तो जिस भी आत्मा को हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे वो उस तक पहुंचते हैं और उसका अंतर मन शांत और खाली होने के कारण उन्हें सहजी स्वीकार कर लेगा। इसलिए यह प्रयोग अमृत वेले ही करना है। प्रयोग क्या करना है, कैसे करना है? जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो उसको अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो और इमर्ज कर उससे इस तरह से शुभ भावना के रूप में बातें करो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। इस तरह से शुभ भावनाओं के रूप में उस आत्मा से बातें करना, बाबा से शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन लेकर उस आत्मा को देना। 7 दिन अमृत विले योग में सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर। उस भाई को हमने बताया अपने युगल को प्रयोग इमर्ज कर, ऐसे प्रयोग करना। वो यहां से गए, मधुबन से जाने के बाद अमृत विले उठकर अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे इसी प्रकार से बातें की कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और वो बात भी उससे बता दी जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे उसने 2 दिन प्रयोग किया। 3रे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी, तो उसने सोचा आज योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है। तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उसे पता चल जाएगा। तो गया युगल के पास, कहा देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी वैसे छुट्टी दे दी जैसे पहले से तैयार बैठी है। कैसे आ गए इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो आप में से भी किनों के सामने ऐसी कोई समस्या हो तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। इसलिए ज्ञान और योग आप सब करते हैं, लेकिन अब समय आया है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ज्ञान और योग का प्रयोग कर विजयी बनने का। तो सभी थोड़ा सा अलर्ट होके बैठे, अभी क्लास का समय है, आप क्लास कर रहे हैं, तो सभी थोड़ा सा सुस्ती का समय ना, तो इस तरह से अपने कान को मसल लो थोड़ा सा है, तो चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती भाग जाएगी है। हाँ, और इस तरह से गर्दन को भी थोड़ा घुमा लो है, ऐसे ऊपर भी नीचे भी है। हाँ, तो अलर्ट होकर बैठेंगे सुस्ती भाग जाएगी है, और कान को थोड़ा इस तरह से भी खींच रहे हैं। हाँ, नहीं तो शरीर से तो यहां बैठे हैं लेकिन आत्मा से कहीं और हैं, तो फिर क्लास में सो जाएगा है। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए है, हम अमृत वेले आंख खुलते ही कोई इनको एक समान मर्ज कर लो। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लाइट हाउस माइट हाउस, ऐसा समान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े शक्ति की अनुभूति। तो समान से क्या होगा, हमारे विचार मान बनते हैं, और जब विचार माने तो स्थिति को मान बनाना, श्रेष्ठ बनाना, अचल अडोल बनाना सहज और सरल हो जाएगा, शक्तिशाली, क्योंकि देह भान ही हलचल का कारण बनता है। इसलिए उसे खत्म करने के लिए श्रेष्ठ स्वमान में रहे हैं। तो स्वमान जहां है तो स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। और स्वमान से कैसे भी अभिमानी आत्मा के अपमान को भी खत्म किया जा सकता है, एक नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता है वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियां हैं बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक भाई थे, आजकल बहुत ऐसे हो रहा है, कोई किसी से पैसे ले लेते हैं देते नहीं है, और फिर सारा समय बुद्धि योग उसी में लगा रहता है, ज्ञान योग सब एक तरफ हो जाता है, टेंशन हो जाता है, बाबा से बुद्धि योग टूट जाता है। तो एक भाई का ऐसे ही फोन आया, भाई जी मैं 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूं, मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है, और समस्या यह है कि मैंने एक जमीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 20 लाख रुपए में, बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, कहा फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। मैं पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए, तो बोल ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते हैं। तो मैंने 20 लाख रुपए दे दिए और पैसे लेकर व्यक्ति बदल गया कि आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। एक जैसे बराबर के साथ साथ 2 प्लाट थे, बात हुई थी 1 नंबर की, वो देना चाहता 2 नंबर। तो बोल नहीं मुझे तो 1 नंबर ही चाहिए। बोले 1 नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर देंगे। बोल ठीक है आपको नहीं देना तो मेरे पैसे वापस कर दो। कल ले जाना, कल गया 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे वापस नहीं कर रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा, पैसे भी नहीं दे रहा, तो बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, तो क्या करूं। तो हमने एक उसको कहा कि आप एक प्रयोग करिए। चलो अब प्रयोग बाद में करेंगे, पहले बाबा को याद करो। तो हमने उस भाई को बताया कि आप एक प्रयोग करिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ जिसने मेरे पैसे लिए हैं। ऐसे में इनका रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो, और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापिस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। इनका ये संकल्प जरूर करना तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। उसने ऐसा ही किया, ऐसे योग करना शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ, ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए, इससे उसको सद्बुद्धि मिले, वो मेरे पैसे वापस कर दे, मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 20 लाख रुपए देकर चला जाता है। ताली बजाई लेकिन जोर से नहीं बजाई आप लोगों ने, हाँ थोड़ा चुस्ती आ जाए ना, अलर्टनेस हो रहेगी, हाँ ताली बजाने से चुस्ती आ जाती है, सुस्ती भाग जाती है। तो देखो कितनी बड़ी शक्ति है, जो कार्य बोल से नहीं हो पाया वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस ने बाबा के योग ने कराया। योग के द्वारा, स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन के द्वारा आप अपने शारीरिक कर्म भोग पर भी विजयी बन सकते हैं। इतनी बड़ी शक्तियां, अभी 1.5-2 महीने पहले ही हम बॉम्बे गए थे, वहां से विदर्भ महाराष्ट्र ये कर्नाटक में गए भट्टी की सेवा में। तो आबू रोड से जब मैं ट्रेन में बैठ रहा था तो सीट के नीचे सामान रख रहा था, तो कुछ ऐसी नुकीली चीज थी, उंगली को लग गई और उंगली कट गई, 1/2 इंच उंगली कट गई और खून निकलने लगा, दर्द भी होने लगा। अब ट्रेन में तो कोई दवाई गोली की बात ही नहीं है। सीट के नीचे सामान रख के हम सीट के ऊपर बैठ गए, यही उंगली थी, इसके ऊपर दूसरी उंगली ऐसे रख ली और उंगली रखते हुए सामने करके दृष्टि दी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इसे उंगली के ऊपर डाल रहा हूँ, इससे इसका खून निकलना बंद हो जाए, दर्द बंद हो जाए। ऐसे दृष्टि देते 25 बार संकल्प किया और उसके बाद उंगली हटा ली, खून निकलना बंद, दर्द भी काफी कम हो गया और 20-25 मिनट के अंदर सब कुछ नॉर्मल जैसा हो गया बिना किसी दवाई गोली के। तो इतनी बड़ी शक्ति है हमारे एक एक योग युक्त पावरफुल वाइब्रेशंस का। तो हम अपने स्वमान के महत्व को जानें, अपनी शक्तियों को पहचानें और उनको सेवा में लगाएं, सफल करें, यूज करें, स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में, कर्म भोग पर विजयी बनने में। तो आप हलचल की परिस्थितियों में भी रहते अचल अडोल स्थिति बना सकेंगे। और हलचल का कारण क्या बनते हैं? हमारे मन के व्यर्थ के विचार, नेगेटिव विचार, क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे करें, क्या करें, ये करें या वो करें, तो हलचल पैदा करते हैं ना ऐसे विचार। क्यों व्यर्थ के विचार चलते हैं? जब मन को हम खाली फ्री छोड़ देते हैं, मन का काम है संकल्प करना। अगर ज्ञान योग के विचार नहीं देंगे तो जो देखेंगे जो सुनेंगे उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिनको स्थिति को अचल अडोल बनाना है वो हमेशा कोई न कोई स्वमान का अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, मनन चिंतन स्टडी करके चलना बहुत बहुत जरूरी है। बाबा के महावाक्य इस संबंध में कि यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। जहां व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, सुनिए एक अनुभव। मैं हर बात के पीछे एक अनुभव सुना रहा हूं ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। तो एक भाई को, बाबा के बच्चे थे वो, एक भाई को एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे थे। तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी कि आप प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। तो उन्होंने फोन पर पूछा, ऐसे ऐसे मेरे सामने थोड़ी हलचल है और तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा गाइड करें। तो उनको बताया कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो तब इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ाई याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, सफेद कपड़े पहनकर बैज लगा के जाना और बताना उसका रिजल्ट क्या रहता है। उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। गया तो जहां पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए तो दो बुजुर्ग से लोग वहां इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज पर गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। बोले फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोला हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोले हाँ जी। ये इंटरव्यू हो रहा है देखो है। तो उसने बस थोड़ा सा आत्मा और परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग और दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया। योग पूरा हो गया फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा, साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है। तो उनकी आंखें खुली, अच्छा आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न इससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोले हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा, तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 3-4 मिनट का गीत पूरा हो गया फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा, साहब अभी गीत पूरा हो गया तो उनकी आंखें खुले, अच्छा आप तो गीत गाने बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। तो ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों की कमाल, शक्तिशाली विचारों की कमाल। इसलिए कैसी भी परिस्थिति समस्या आए लेकिन कभी अपने मन में कमजोर नेगेटिव व्यर्थ के विचारों को नहीं लाएं तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा और एक अचल अडोल स्थिति बना सकेंगे। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम 3 बातों का अभ्यास अभी से ही रोजाना करके चलें, जिनको अपने योग के चार्ट को बढ़ाना है, पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, सहज निरंतर योगी बनना है, स्थिति को अचल अडोल बनाना है, तो ये 3 अभ्यास अभी से ही सब रोजाना की दिनचर्या में करके चलें। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है, जो भी सामने आए, ये भी आत्मा वो भी आत्मा। अभी से शुरू कर दे, यहीं से 50 से ज्यादा लोग बैठे यहीं हैं, जब भी जो भी जिसको देखे ये भी आत्मा वो भी आत्मा वो भी आत्मा, कम से कम 50 ज्यादा आप जितनों को भी देख सकते। सारे दिन में तो हम कितने लोगों को देखते हैं। क्या होगा इससे कि हमारी आंखें जो कुछ देख रही है मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है, वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, वैसे विचार बनेंगे और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। पांच दस पंद्रह मिनट के बाद, दो मिनट के लिए, एक मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ, वह शरीर बन जाओ। तो क्या होगा इससे कि नियम है, जैसे हमें शरीरी बनते हैं तो आत्मा स्वतः इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया के नीचे आ जाती है। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा आपको वहां मौत के मुंह से भी निकाल कर बाहर ले आएगा। ऐसा ही एक अनुभव इस संबंध में बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विदानर बनाएगा और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा। तो कैसे है शरीरी बनने की प्रैक्टिस सेफ्टी का साधन बनती है, सुनिए एक अनुभव। एक भाई बाबा के बच्चे रात को 10 बजे दुकान बंद करके वापस अपने घर लौट रहे थे। तो उस दिन उस रास्ते पर लाइट नहीं थी, अंधेरा था। तो किसी ने उनको बोला भी भाई इस रास्ते से आप ना जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, नहीं तो कुछ भी घटना आपके साथ हो सकती है। तो उसने कहा कौन क्या करेगा, भगवान हमारे साथ है, हम इधर से जाएंगे। ऐसा कहकर वहीं से चल पड़ा। और जहां बहुत अंधेरा था वहां कुछ लोग झाड़ियों में छुप के बैठे हुए थे। तो जैसे ही वहां के निकलने लगा तो उसको आवाज लगाई, या तो आप अभी रुक जाओ नहीं तो अभी हम आपको खत्म कर देते। वो खड़ा हो गया, पांच छह लोग उसके आसपास आके खड़े हो गए और कहा जो भी तुम्हारे पास है निकालो नहीं तो अभी हम आपको खत्म कर देते। तो उसने कहा देखो आप लोगों को जो चाहिए ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। तो एक व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया है, एक उससे जो भी सामान है उसके पास वो निकाल रहा है और तीन चार लोग उसके आसपास खड़े हैं और वो बिल्कुल बिंदु बन के शरीरी बन के बाबा को याद कर रहा है, बाबा बस अभी आ जाओ आपकी मदद की आवश्यकता है। तो कैसे भगवान उसकी मदद करता है, एक वंडरफुल अनुभव है। तो जिस व्यक्ति ने उसको पकड़ा हुआ है उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई पकड़ कर ले जा रहा हो, तो जोर से चिल्लाता है मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, कोई पकड़ के ले जा रहा है। अरे बोल क्या हुआ, कौन पकड़ के ले जा रहा है, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। नहीं मेरे को कोई पकड़ के ले जा रहा है। अब जो पकड़ के ले जा रहा हो और दिखाई नहीं दे रहा तो कौन हो सकता है ऐसा, नहीं बाबा ये काम नहीं करेगा, और कौन हो सकता है, सोच भूत आत्मा इविल सोल, वो जिससे उसका हिसाब किताब होता है उसको ही दिखाई देगा, बाकी किसी को नहीं दिखाई देगा। तो ये सोचकर वो डर गए कहीं तो भूत तो नहीं, अगर भूत का हम कुछ ले गए तो घर भी पहुंच जाएगा, वहां भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए इससे बच के भागो। तो जोर से भूत 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 ऐसे चिल्लाते और जो कुछ उसे लिया वहीं फेंक कर और भाग गए। तो लाइट भी भाग गई, इसलिए लाइट भी भाग गई। चलो जब तक लाइट आए, सुनने में तो आ रहा है ना सबको, हाँ बस तो सुनने में आ रहा है तो हम चालू कर रखते हैं। तो इस तरह से शरीरी बनने की प्रैक्टिस हमारी सेफ्टी का भी साधन बन जाएगी, इसलिए इस प्रैक्टिस में अपने आप को परफेक्ट बनाए हैं। और बाबा ने यह भी कहा कि बच्चे बहुत काल का यह शरीरी बनने का अभ्यास ही अंत में काम आएगा और पास विदानर बनाएगा, इसलिए इस अभ्यास में अपने आप को परफेक्ट बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो, क्योंकि हर एक को पुरुषार्थ करके फरिश्ता तो बनना ही है ना। तो जो हमें अंत में बनना है उस अपने संपन्न स्वरूप को, फरिश्ता रूप को बार बार अपने सामने लाओ कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। कैसा होगा अपना फरिश्ता रूप, ये शरीर मेरा लाइट और मैं आत्मा भी लाइट, इस लाइट के शरीर में चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान। तो इमर्ज कर लो हर एक अपने 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 फरिश्ते रूप को और फील करो मुझसे चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैल रही है। किसका बजरा भी बंद कर ले तो वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी हैं। तो ये तीनों अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में आप विधि पूर्वक करके चलो तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, एक पावरफुल अचल अडोल स्थिति का अनुभव करेंगे। लेकिन होगा करने से। और अचल डोल स्थिति बनाने के लिए दो बातों को अंडरलाइन करके चलें। क्या दो बातें हैं? फुल स्टॉप और फुल स्टॉक, दोनों इंग्लिश शब्द हैं। फुल स्टॉप माना हम जब चाहें जहां चाहें बीती बातों को बिंदी लगा दें, फुल स्टॉप लग जाए, उसका चिंतन ना चले। और दूसरा फुल स्टॉक, हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल होना चाहिए। क्यों जरूरी है, क्या होगा इससे? देखो, हलचल का कारण बनते हैं हमारे, जैसा कि मैंने बताया, व्यर्थ के नेगेटिव विचार और कमजोर विचार। जहां व्यर्थ नेगेटिव कमजोर विचार हैं, तो उनको उनकी गति फास्ट होती है और उनको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको फुल स्टॉप लगाना, बिंदु लगाना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत सारा समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है और स्थिति साधारण हो जाती है। तो फुल स्टॉप लगाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? उसके लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर। विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। कंट्रोलिंग पावर कहां से आएगी? उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम अपने विचारों को महान बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। विचार महान कैसे बनेंगे? ज्ञान के मनन चिंतन से विचार महान बनेंगे। और जहां विचार महान है तो उन्हें आप सहज कंट्रोल कर सकेंगे, और जहां कंट्रोलिंग पावर है तो बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लगाना सहज और सरल हो जाएगा। दूसरा फुल स्टॉक, हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल होना चाहिए। क्यों? वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए, जब एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी, दूसरी तरफ विनाश की हलचल तीव्र गति से शुरू होगी, तो उस समय अनेक दुखी तड़पती भटकती आत्माएं हम सबके पास आएंगी। हमें सुख दो, शांति दो, नजर से निहाल करो। आप कहते थे हमको भगवान मिला है, थोड़ा हमारे को इसकी अनुभूति कराओ। कौन उनकी इच्छा पूरी कर सकेगा? जिन्होंने अपने स्टॉक में सर्व खजाने शक्तियां जमा की है, वही दूसरों को दे सकेगा। और आपका ही खजाना खाली है तो आप दूसरों को क्या दे पाएंगे? तो इसलिए स्टॉक को सर्व खजानों से फुल करके चलना बहुत जरूरी है। तो कैसे होगा फुल? तो जो भी बाबा ने हमें खजाने दिए, जरा याद कर लो क्या क्या खजाने दिए हैं बाबा ने। ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, स्वां, संकल्प, ये सब खजाने ना, और तन मन धन, ये भी खजाना है। कैसे? इस तन को जितना बाबा की सेवा में लगाएंगे, तन स्वस्थ और निरोगी बनेगा, आप सेवा अच्छी कर सकेंगे, भाग बना सकेंगे, तो खजाना जमा होगा ना। और मन को जितना बाबा की सेवा में लगाएंगे, बाबा में लगाएंगे, मन शक्तिशाली पावरफुल बनेगा। और तीसरा, धन को जितना बाबा की सेवा में सफल करेंगे, ऐसी आत्माओं के पास धन की कभी कमी नहीं आएगी, और ही बढ़ता जाएगा, स्टॉक फुल हो जाएगा आपका। और जो भी खजाने दिए, उन सभी खजानों को जितना हम बाबा की सेवा में लगाएंगे, सफल करेंगे, दूसरों को दान देंगे हैं, उतना वो खजाने हमारे बढ़ते जाएंगे, स्टॉक हमारा फुल हो जाएगा। तो सहजी फुल स्टॉक लग जाएगा। इस पर एक अनुभव। एक बुढ़िया माता थी, बाबा के ज्ञान में चलती थी, उसके पास बहुत धन था, अथा धन, लेकिन बाबा की भंडारी में थोड़ा सा ही करती थी। तो और भाई बहन उसको बोल देते, माताजी ये सब कुछ विनाश हो जाएगा, चोर लूट ले जाएंगे, पता चल गया तो गवर्नमेंट ले लेगी, इससे तो अच्छा क्यों नहीं आप बाबा की भंडारी में करके अपना भाग्य बना लो। फिर भी लेकिन किसी का नहीं सुनती थी, वो थोड़ा सा ही करती थी। तो एक दिन रात को सोई हुई थी, तो नींद में उसने स्वप्न देखा। तो स्वप्न में वो क्या देखती है कि वो स्वर्ग में पहुंच गई है। बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के महल, बाग बगीचे देखकर ही बुढ़िया की दिल खुश होगी, कितना अच्छा स्वर्ग है। तो और लोग स्वर्ग में सब अपने अपने घरों में जा रहे हैं, लेकिन इसको अपने घर का मालूम नहीं था। तो स्वर्ग के गेट पर जो व्यक्ति खड़ा था, इससे उसने पूछा, भाई मेरा घर कौन सा है स्वर्ग में, मेरे को भी तो बताओ, ताकि मैं भी देखूं आप लोगों ने कैसा बनाया मेरा घर स्वर्ग में। तो उसने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाकर कहा, भाई जाओ ये माता जी को इनके घर तक छोड़ कर आओ। तो वो व्यक्ति माता जी को लेकर चलता है, तो वहां तो बड़े बड़े महल थे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता, धीरे धीरे छोटे छोटे महल आते जा रहे, ये सब स्वप्न में देख रही हो। तो बुढ़िया सोचने लगी, कहां लेके जा रहा है, तो और ही छोटे छोटे महल आते जा रहे। लास्ट में जाके एक छोटी सी कुटरिया वो माता की बनी हुई थी, तो कहा माता जी ये आपका महल है। देख कर ही बुढ़िया बड़ी परेशान, कहने लगी आप लोगों ने मेरे लिए इतना ही छोटा सा महल क्यों बनाया है। तो व्यक्ति जवाब देता है, माता जी हम क्या करें, आपने जितना उधर से इधर भेजा उससे हम इतना ही बना पाए, समझे। क्योंकि वो करती ही थोड़ा सा थी तो उतना ही मिलेगा ना। देखो भगवान तो दाता है, किसके लेकर क्या करेगा। आज जो भी उसके यज्ञ में आप सफल कर लेंगे उतना आपको भविष्य में मिल जाएगा। तो ये सुनकर बुढ़िया की आंख खुली कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं कल से ही अपना सब कुछ सफल करने लग जाऊंगी। और सफल करने लगी। तो आप सोच लेना, आपको लोगों को स्वर्ग में छोटे महल से काम चलेगा या बड़ा महल चाहिए, इसका निर्णय आप खुद करना। और बड़ा चाहिए तो सब कुछ सफल करना होगा। और आप सबने देखा कोरोना काल में करोड़ों की संपत्ति के मालिक अनेक आत्माएं ऐसे ही सब कुछ छोड़कर चली गई, पैसा उनको बचा नहीं पाया, पैसा उनके काम नहीं आया है। तो इसलिए ये जो कुछ बाबा ने हम सबको बताई दिया बच्चे, जो कुछ इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो आज है कल नहीं होगा, सब कुछ खत्म होने जा रहा है। इसलिए जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए शुभ कार्य में देरी ना करें, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी का नंबर लग सकता है, बुलावा आ सकता है। इसलिए सदैव सब कुछ सफल करके रेवर रेडी रहना है। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम हलचल का कारण बनता है व्यक्ति का अकेलापन। अकेलापन भय लगता है ना, मैं अकेली हूं, अकेला हूं, कौन मदद करेगा, कोई समस्या आ गई तो क्या होगा, कैसे होगा, करें ना करें, तो वो भी हलचल में लाती है। तो बाबा ने कहीं और कोई बड़ी से बड़ी समस्या आ गई है जो आपकी लिमिट से बाहर की बात है, तो वहां भी हलचल पैदा होती है ना। तो वहां पर बाबा के महावाक्य आप सबने सुने होंगे, बच्चे कोई विघन परिस्थिति समस्या आए यदि तुम दिल से बाबा को याद कर कहेंगे प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो, तो भगवान तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। सुने हैं ना। तो इतनी बड़ी ऑफर जब बाबा हमें दे रहा है तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं। तो जहां सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो उसका आह्वान कर लो, उस जो भी समस्या परिस्थिति है दिल से याद कर उसे बता दो, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी वहां सूली से कांटा बन जाएगी। एक अनुभव, एक बार हम भट्ठी कराने के लिए गए थे भुवनेश्वर उड़ीसा। दो दिन की भट्ठी थी, तीसरे दिन बहन जी गाड़ी में बैठा के एक दूसरे सेंटर पर क्लास कराने के लिए लेके जा रही थी, यही 11 बजे का लगभग टाइम था। दो टीचर बहने थी गाड़ी में, एक माता थी, एक गाड़ी चलाने वाला भाई और एक हम, पांच लोग जा रहे थे। छोटा रास्ता था, सिंगल रोड, रास्ते में एक गांव पड़ा। जैसे ही गांव क्रॉस करने लगे दूसरी साइड से एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आया, गाड़ी से टकरा गया। मैंने कहा बाबा इसको बचाना नहीं तो मुश्किल हो जाएगा है। तो उसको तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उसकी मोटरसाइकिल को थोड़ा नुकसान हुआ। और फटाफट ऐसा देखकर और 20-25 लोग इकट्ठे हो गए, हमारी गाड़ी की चाबी ले ली, हंगामा करने लगे, ये है वो है, पैसे देकर जाओ। अब गलती किसी की भी हो लेकिन बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है। तो वो 20-25 लोग थे, हम पांच लोग ही थे। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं, तो आप दुकान पे चलिए, आपकी मोटरसाइकिल ठीक करा देते। नहीं नहीं हमारे को तो पैसे चाहिए, पैसे बहुत मांग रहे। अब ऐसे समझाते करते उनको आधा घंटा बीत गया, फिर भी उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। तो मैंने देखा कि बात बन नहीं रही है और ऐसे टाइम वेस्ट जा रहा है। तो मैंने वहां से थोड़ा सा अलग होकर और बाबा का आह्वान किया, सारी समस्या बाबा को याद कर बताई और बाबा को कहा बाबा अभी देखो हम ऐसे ऐसे यहाँ सेवा पर जा रहे थे, यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है, ये लोग यहाँ इतना हंगामा कर रहे हैं, कोई बात मान नहीं रहे, अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है वो आप जानते हो। तो मैंने कहा आप आओ इस समस्या का समाधान करो। ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर कहा, बस भगवान जी के लिए तो एक सेकंड की बात है। तो जो माता हमारे साथ थी, बाबा तो किसी के द्वारा ही कराएगा ना, जो माता हमारे साथ थी उसको टचिंग मिली और उसके अंदर फोर्स आया और वो सबके आगे आके बोलने लगी कि ये मेरी गाड़ी है और मैं आप लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगी, जिसको चलना है पुलिस थाने चलो, जो पुलिस फैसला करेगी वो होगा। और देखो इस व्यक्ति के मुंह से बदबू आ रही है, इसने शराब पिए हुए, इसलिए हम एक गाड़ी एक पैसा भी नहीं देंगे। अब ये प्लस पॉइंट मिली क्योंकि शराब पी के गाड़ी चलाना तो कानूनी अपराध है, अगर वो पुलिस में गए तो उनको अंदर करेगी पुलिस। ये सुनकर वो ठंडे पड़े और 5 मिनट के अंदर तो हमको कहने लगे कि भाई साहब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाइए। तो जो आधा घंटे से जिस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, 5 मिनट के अंदर बिना कुछ लिए दिए हम वहां से चल पड़े। तो ये है उस आलमाइटी बाबा की कमाल। अब लास्ट में एक स्लोगन सुना के मैं पूरा करता हूं। बहुत जगह लिखा हुआ देखा हुआ आप लोगों ने, स्लोगन ये है कि बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। कहीं भी कोई बात समस्या आए, हमारा काम है बाबा को याद करना, बता देना, बस वो सब कुछ हमारे लिए करने को तैयार है। एक अनुभव इस पर भी, एक जगह हम भट्टी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्टी थी, फिर 3 दिन की, एक एक दिन की अलग अलग जगह उन्हीं के कनेक्शन में भट्टी थी। तो एक ही दिन की भट्टी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे, तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिला था। काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की कमी हो रही थी। 4th दिन वहां की बहन जी ने एक मॉर्निंग क्लास कराने के लिए 4th सेंटर पर भेजा। जब 4th सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बहन जी ने जाते ही और प्रोग्राम दे दिया, भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना। अब मेरे को तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था। तो मैंने बहन जी को कुछ नहीं बोला, उनकी बात सुन ली और मैं बाबा को याद करके कहने लगा, बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है और बहन जी ने प्रोग्राम दिया है क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है, तो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना। मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप हो। ऐसे मैंने बाबा को याद कर बता दिया। बस भगवान जी के लिए तो 1 सेकंड की बात है। तो उसी समय क्लास पूरा किया हमने, नाश्ता किया और उसके बाद बाबा ने बहन जी की बुद्धि को थोड़ा टच किया और बहन जी आकर कहती है, अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास कराने। वाह वाह वाह। इसका मतलब कि हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है। ओम शांति।
लता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। एक हाथ हिलाकर भाई जी को थैंक्स करेंगे। थैंक यू भाई जी।